स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पहला तिमोथियस नामक पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहले तिमोथियुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें अब तक हमने देखा है कि पौलुस ने तिमोथियुस को पिछले अध्ययन में बताया कि बूढ़ों को पिता जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, जवान स्त्रियों को बहन जानकर और जवान भाइयों को भाई जानकर व्यवहार करे, उन्हें आदर दे। इतना ही नहीं, उसने विधवाओं की देखभाल करने के लिए भी बताया कि हमें किस प्रकार से कलीसिया में होकर विधवाओं का ख्याल रखना है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 5 और 6 को देखेंगे और इसी के साथ पहला तिमोथियुस के अध्ययन का भी समापन होगा। आज पहला तिमोथियुस की पत्री उसके अध्याय 5 और 6 में आगे बढ़ेंगे, जहां पर पौलुस तिमोथियुस को दिए जाने वाले निर्देशों में कलीसिया के पदाधिकारियों के साथ व्यवहार करने के निर्देश देता है कि कलीसिया का प्रबंध एवं संचालन में उसे क्या करना है और कैसे करना है। यह कलीसिया के व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। ये वास्तविक और अर्थपूर्ण बातें हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तिमोथियुस के पत्री 5 अध्याय उसका 13 पद। लिखा है, इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। वे ऐसी बातें करती हैं जिनका नहीं करना ही उचित है। एक युवा विधवा जो अब परिवार के उत्तरदायित्व से मुक्त, शायद उसके बच्चे भी नहीं हैं, वह एक प्रकार से आवारा स्त्री है। पहला तिमोथियुस 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें। स्त्री परिवार बनाने वाली होती है। इस संपूर्ण बाइबल अंश में पौलुस कलीसिया के स्त्री पुरुष सदस्यों के व्यवहार से संबंधित निर्देश देता है। वह बल दे करके, जोर दे करके कहता है कि ये संबंध संसार के समक्ष सर्वोच्च स्तर पर हो, कि कलीसिया की गवाही ठहरे, कि किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न मिले। पहला तिमोथियुस के पत्री 5 अध्याय के 15 पद में लिखा है, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं, निसंदेह वे सच्ची विश्वासी नहीं हैं। पहला तिमोथियुस 5 उसके 16 में लिखा है, यदि किसी विश्वासनी के यहाँ विधवाएं हो तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं। प्रत्येक परिवार अपनी विधवा की सुधि ले, जिससे कि कलीसिया परिवार रहित विधवाओं की सुधि ले पाए जो वास्तव में आवश्यकता ग्रस्त हैं। पहला तिमोथियुस 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आरंभिक कलीसिया शिक्षकों को परिश्रमिक देती थी और अच्छे शिक्षक को अधिक दिया जाता था। पहला तीमुथियुस 5:18 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पौलुस व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25:4 और लुकार्चित सुसमाचार 10:7 का संदर्भ दे रहा है। मेरे विचार में पैसे के लोभी प्रचारक बहुत ही कम होते हैं। अधिकांश मनुष्य एक अलग ही उद्देश्य से सेवा करते हैं। यदि आप किसी प्रचारक को उदारतापूर्ण भेंट दें तो आप उसके दिल को नहीं दुखाएंगे। यदि किसी भ्रमणशील प्रचारक की शिक्षा से आपको आशीष मिलती है तो उसके साथ दया अवश्य प्रकट करें। पहला तीमुथियुस 5:19 में लिखा हुआ है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुने। यदि यह विधि अपनाई जाए तो व्यर्थ की बातें बहुत कम हो जाएंगी, जिनके कारण हमारी कलीसियाओं में गलतफहमी और झगड़े उत्पन्न होते हैं। पौलुस कहता है कि पादरी और कलीसिया का प्रत्येक सदस्य कानाफूसी करने से दूर रहे, चाहे वह पासवान के विरुद्ध हो या पदाधिकारियों के। सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे अपने दोषारोपण गवाहों के साथ प्रस्तुत करें। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कुछ बोलते हैं तो आपके पास तथ्य हों, और आप उन तथ्यों को लेकर उचित अधिकारी के पास जाएं, न कि अफवाह फैलाएं। प्रत्येक दोषारोपण के एक से अधिक गवाह हों। पहला तीमुथियुस 5:20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। यदि यह देखा जाए कि कलीसिया के किसी अगुए ने पाप किया है और उसके प्रमाण हो तो उसे झिड़का जाए। अब प्रश्न यह है कि क्या उसे सबके सामने झिड़कना चाहिए। मेरा अपना विचार तो यह है कि यदि उसके पाप का प्रभाव कलीसिया पर नहीं पड़ता है तो उसे सबके सामने नहीं लाना है और न ही सबके सामने क्षमा मंगवाना है। परंतु यदि किसी पदाधिकारी का पाप कलीसिया पर बुरा प्रभाव डालता है तब मेरे विचार में उसका नाम पुकारा जाना चाहिए, वरन उसे सदस्यता से भी बाहर कर देना चाहिए। कलीसिया के अगुओं के जीवन में पाप कलीसिया को बहुत हानि पहुंचाता है और उसके साथ क्या किया जाए, पौलुस यहां पर स्पष्ट करता है। पहला तीमुथियुस 5:21 में, परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। तीमुथियुस कलीसिया में सबके साथ एक सा व्यवहार करे। कलीसिया में एक पदाधिकारी धनवान है और वह पासवान की भलाई करता है, उसे कुछ कुछ दिलाता रहता है। पादरी उसकी प्रशंसा करता है और उसकी गलती होने पर भी उसे दोषी नहीं ठहराता है। यहां पर पौलुस कहता है कि हमें कलीसिया में पक्षपात नहीं करना है। याकूब भी यही बात करता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 5:22 में लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। मेरे मित्रों, हम पहले देख चुके हैं कि पदाधिकारियों की नियुक्ति हाथ रखने के द्वारा हो। पहला तीमुथियुस 4:14 में, हाथ रखना सेवा में सहभागिता को दर्शाता है, इसमें शीघ्रता न की जाए, नए विश्वासी को तुरंत कार्यभार न सौंपा जाए। यदि हम किसी युवा विश्वासी को वचन में मजबूत न होने से पूर्व शिक्षक नियुक्त कर दें तो उसकी धर्म ज्ञान पथभ्रष्ट होने की अति संभावना है। कलीसिया में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना है और सदस्यों को विश्वास में दृढ़ करना होता है। आज कलीसियाओं में बहुत भावना प्रदर्शन और प्रेम की चर्चा है। कलीसिया में प्रेम होना आवश्यक है, परंतु उस प्रेम को परमेश्वर के वचन में स्थित होना है। मेरे प्रियो, हमारी भूल यह है कि हम किसी अनुभव को आत्मिक परिपक्वता की परख मानते हैं, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर का वचन आत्मिकता की परख है। अनुभव तो उसकी सत्यता का प्रमाण है। हम निश्चय जान ले कि बाइबल की शिक्षा के विपरीत कोई भी अनुभव परमेश्वर की ओर से नहीं है। इफिसुस में अनेक नए विश्वासी थे जिन्हें मसीही शिक्षा की आवश्यकता थी। अतः तीमुथियुस को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना है कि वह शिक्षकों का चुनाव करके उन्हें वचन की शिक्षा के लिए नियुक्त करे। लिखा है, दूसरों के पापों में भागी न होना। दूसरे शब्दों में तीमुथियुस, समझौता न करे। कोई तुझे बातों में बहका कर किसी नए विश्वासी को शिक्षक न बनवा दे। यदि तू ऐसा करेगा तो पाप का सहभागी होगा। सुनिश्चित कर कि शिक्षक परमेश्वर के वचन में दृढ़ हों। पहला तीमुथियुस 5:23 में हम पढ़ते हैं, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पद को पढ़कर मुझे हंसी आती है। इसके अर्थ प्रायः गलत ही निकाले जाते हैं। निसंदेह उस समय मदिरा दवाई के रूप में काम आती थी। आज बहुत सारे विश्वासी इस पद को लेकर के कहते हैं कि तीमुथियुस को भी कहा गया था कि वह मदिरा पिए, दाखरस पिए, इसलिए हम पीते हैं। परंतु उन्हें यह पता होना चाहिए कि तीमुथियुस बीमार था और इसके कारण से उसे दवा के रूप में लेने के लिए कहा गया था। पहला तीमुथियुस 5:24 में लिखा है, कुछ मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। कभी कभी परमेश्वर विश्वासी के पाप का दंड यहीं दे देता है। यदि उसे तुरंत दंड न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दंड नहीं मिलेगा। मैंने वर्षों से यही देखा है कि अंततः परमेश्वर दंड देता ही है। मेरे मित्रों, पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को यही कहा था क्योंकि वे प्रभु भोज को उचित रूप से नहीं मना रहे थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11:30 में वह कहता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। पौलुस कहता है कि कुछ लोगों को तो दंड मिल ही गया था, परमेश्वर के दंड ही के कारण उनमें कुछ लोग रोगी थे और कुछ मर भी गए थे। इससे आगे पद 31 में वह कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। विश्वासी पाप के विषय स्वयं को जांच सकता है। उसे दुख मनाने की अपेक्षा पाप का निवारण करना चाहिए। यदि उसने किसी का दिल दुखाया है तो वह उससे क्षमा मांगे और फिर उसे ना दोहराए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसने स्वयं को नहीं जांचा है। मेरे मित्रों, कुरिन्थ को लिखे अपने पहले पत्र में वह आगे कहता है, 32 में, प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। संसार ऐसे पाप करता है और दंड पाता है। विश्वासी भी इससे बच नहीं पाते हैं। या तो आप स्वयं को जांचें या परमेश्वर से दंड पाएं। कभी कभी परमेश्वर यही दंड दे देता है। यदि नहीं तो प्रभु के न्याय के सिंहासन के समक्ष आपका न्याय किया जाएगा। पहला तीमुथियुस की पत्री 5:25 में लिखा है, वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। मेरे मित्रों, यही सिद्धांत भले कामों में काम आता है। कभी कभी परमेश्वर विश्वासी को प्रतिफल यही दे देता है। कुछ को प्रतिफल पाने के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करनी होगी। अधिकांश विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अब अध्याय 5 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 6 से अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 6 का विषय है कलीसिया में पदाधिकारियों के उत्तरदायित्व। इसके साथ हम उपसंहार भी देखेंगे, अन्यों के साथ विश्वासियों के संबंध। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, जितने दासता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह। लिखा है दासत्व के जुए के नीचे। अब पौलुस कर्मियों और नियोजकों के संबंध के बारे में चर्चा करेगा। एक विश्वासी को नियमानुसार पूरा समय काम करना आवश्यक है। यदि उसका समय 5 बजे तक है तो वह 5 बजे तक काम करे। कभी कभी कर्मी आधा काम छोड़कर चले जाते हैं, परंतु विश्वासी को पूरे दिन की मजदूरी दी जाती है तो उसे पूरे दिन तक ही काम करना है। मेरे प्रियो, अब यदि काम करने वाला कर्मी विश्वासी हो और नियोजक भी विश्वासी है तो उनके संबंध भिन्न हैं। यह किसी की अनुबंध से अलग है। मैं एक फैक्ट्री के बारे में जानता हूं जिसके स्वामी विश्वासी हैं। मुझे उनके मध्य परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर प्राप्त हुआ था और उनकी मानसिकता के लिए मैंने उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि हम प्रशंसा के योग्य नहीं हैं। हमारे कर्मी विश्वासी होने के कारण अन्यों से कहीं अच्छे सेवक हैं। यह 2-पक्षीय मार्ग है। वे ऐसे अच्छे कर्मी हैं कि हमें यह अनुभूति होती है कि हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे हैं, वे हमें कुछ देते हैं। यह कैसे अद्भुत संबंध है। देखिए मसीही विश्वास कैसे फैक्ट्रियों में पहुंचता है। उसके हाथ ग्रीस से गंदे होते हैं, उसके पांव कभी कभी मिट्टी से गंदे होते हैं, पाप की नहीं परिश्रम की मिट्टी से। पहला तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय उसके 3 से 5 पद में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। सेवा कार्य में भी कुछ घमंडी लोग होते हैं, वे परेशानी का ही कारण होते हैं। घमंड से सदा ही परेशानी उत्पन्न होती है और यह परमेश्वर की संतान का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। हमें सदा स्मरण रखना है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए पापी हैं। घमंड एक सदाकालीन खतरा है। पद का घमंड, जाति का घमंड, रूप रंग का घमंड, मर्यादा का घमंड, धन दौलत का घमंड आदि। कुछ लोग तो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए जाने का भी घमंड करते हैं, परंतु मेरे मित्रों, हम विश्वासियों के पास दीनता के लिए बहुत कुछ है। हमारी पृष्ठभूमि बड़ी दयनीय और दुखपूर्ण है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार प्राप्त पापी हैं। हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 6 पद में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लिखा है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जी हाँ, यह महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की संतान अपने जीवन के स्तर पर संतोष करे, संतुष्ट रहे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यह एक सच्ची लोकोक्ति है। एक धनवान मनुष्य के उत्तराधिकारी उसकी मृत्यु के समय बाहर खड़े हुए थे। जब डॉक्टर और वकील बाहर आए तो उन्होंने पूछा, वह क्या छोड़कर गए हैं? वकील ने उत्तर दिया, वह सब कुछ छोड़ गए हैं। अपने साथ कुछ भी लेकर के वे नहीं गए हैं। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। मेरे प्रियो, यही कारण है कि परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर के काम में पैसा लगाना उचित है। मेरे विचार में वसीयत बनाना बुरा नहीं, परंतु इसका प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। एक कविता है, दान दो जब जी रहे हो तब आप जानोगे कि वह कहां जा रहा है। जी हां, परमेश्वर की संतान सुनिश्चित करे कि वह किसी न किसी प्रकार परमेश्वर के काम में हाथ बटा रहा है और उसका दान कहां जा रहा है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। धन से संतोष प्राप्त नहीं होता है। पहला तीमुथियुस 6 के 10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं, वह अनैतिक है। पैसे से प्रेम करना बुराई की जड़ है। पहला तीमुथियुस 6 के 11 में लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। ये गुण परमेश्वर के जन को खोजने हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस 6 के 12 पद में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, यह युद्ध बाहरी अर्थात सांसारिक या आंतरिक अर्थात आत्मिक हो सकता है। अनंत जीवन को धर ले। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आपको विश्वासी होने के लिए बंदी बनाकर न्यायालय में खड़ा किया जाए तो क्या आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण होंगे? पौलुस यही कह रहा है, अनंत जीवन को धर ले। अपने जीवन से प्रकट करें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 13 और 14 पद में लिखा है, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पोंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। परमेश्वर जो सबको जीवित रखता है, अर्थात परमेश्वर सबका जीवन दाता है, पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं, अर्थात पौलुस ने जो कहा है उसे निष्कलंक और अनिंदनीय रखना है। मेरे मित्रों, यदि आप प्रभु यीशु के अनुयायी हैं तो परमेश्वर की संतान का सा व्यवहार रखें। पहला तीमुथियुस 6 के 15 और 16 पद में लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। अमरता उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। प्रभु यीशु ही एकमात्र है जो मृतकों में से महिमामय देह के साथ फिर जी उठा था। पहला तिमोथियुस 6 उसके 17 से 19 पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। धनवानों को आज्ञा दे, यह पद धनवानों के लिए चेतावनी है। तब कहता है उदार और सहायता देने में तत्पर हो, सहानुभूति दर्शाने और बांटने में भी तत्पर रहें। मेरे मित्रों, हम आगे देख रहे हैं कि सच्चे जीवन को वश में कर ले, अर्थात वास्तविक जीवन को आप ना खोएं। पहला तिमोथियुस 6 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, जो इस पत्री का अंतिम पद है, हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध वकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। दूसरे शब्दों में बौद्धिक प्रचारक या शिक्षक या विश्वासी न बने, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। यहां पौलुस आध्यात्मिक ज्ञान रखने का दावा करने वालों की झूठी शिक्षाओं के संदर्भ में कह रहा है, परंतु यह मानवीय दर्शन शास्त्र के लिए भी है। मेरे मित्रों, यहां इस पुस्तक के अध्ययन को हम यहां पर समाप्त करते हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा हमने बहुत ही उत्तम बातों को सीखा है। कृपया इन वचनों को अपने मन में रखें और उसमें बने रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।